एक दिन ऐसा स्टेज आया, आई वॉमिटेड ब्लड, पूरा मुंह से ऐसे खून, क्योंकि आपके पास वॉमिट कर करके अंदर का जो ये होता है ना, ये सब फट के मुंह से खून आता है। सो आई वेंट टू माई सबाल्टन जो है उसके पास, तो मैं बोला सर मुंह से खून आ रहा है। वो ऐसे देखे, वो ऐसे गले लगा बेंचो ऐसे ना एकदम झप्पी देखे, वेलकम टू द सी। बोले क्या चुत्यापा चल रहा है, वेलकम टू द सी। दैट इज द टाइम आई केम टू नो कि देयर इज अ ट्रेडिशन, कि अगर आपके मुंह से खून आ गया उल्टी कर करके, दैट मीन्स सी हैज एक्सेप्टेड यू।
Why did the Pakistani army torture?
See, as per the Geneva Convention, कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं, आपको जब prisoners of war POW बनाते हैं, तो you are supposed to be treated in a very फौजी जैसे behave करना चाहिए। But ये लोग मान ही नहीं रहे थे ना कि ये घुसपैठ किए करके, they were totally claiming कि हम है ही नहीं करके, ये कोई और है करके। So जब पकड़ लिए तो brutality, you know, brutality, pure brutality. That day, उस दिन हमने कसम खाई कि ना साला गोली तुमने पहला चलाया है, लास्ट वाली गोली कब चलेगा वो हम डिसाइड करेंगे। That was the stand हमने जो लिया, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, यू नो, एंड बजा दिए।
दोस्तों, TRS हिंदी पर हमने बहुत सारे आर्मी वेटरन्स और एयरफोर्स वेटरन्स को होस्ट किया है, पर लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर है हमारे पहले नेवी के वेटरन। नेवी की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। विजय नायर सर से हमने बहुत कुछ सीखा नेवी के बेसिक्स के बारे में। अगर आप भी हमारे जैसे इंडियन मिलिट्री को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो इस एपिसोड सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। दिस इज लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर ऑन TRS हिंदी। लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर, वेटरन लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। आपसे इतनी सारी बातें करनी है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट ऑनेस्टली, बट पहले ये कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है।
धन्यवाद, धन्यवाद साहब। मैं हमेशा ना लाइफ में सीखने में बिलीव करता हूँ। व्हेनेवर आई वॉच योर पॉडकास्ट, काफी कुछ सीखता हूँ, यू नो, एंड दैट इज हाउ the respect you command, you know, and aise forum mein bolta, you have damn fan following, man. Meri daughter and my friend's daughter, first time, then they say, oh, Ranveer, love it, ruk shanti. But you deserve
thank you sir, honored to be hosting you, honestly, hamare ghar pe, hamare studio mein. Genuinely mujhe ye pata nahi ki kahan se start kare. I'm thinking usually I'm जिस जो गेस्ट आते हैं उनकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, देन वी गो ऑन टैंजेंट्स। अगर आपकी स्टोरी की शुरुआत करनी है, कहाँ से करनी चाहिए? आपके चाइल्डहुड से? आई फील कि बहुत सारे लोग आपके चाइल्डहुड के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर वो भी एक एपिक चाइल्डहुड था, बिल्कुल आपके नेवल करियर की तरह।
एकदम एपिक रणवीर, बिकॉज आज जो भी मैं हूँ ना, आज काफी लोग बोलते हैं कि सर आप इतने हम्बल हो, ऑफिस में भी कहीं पे भी बहुत बड़ा टीम है, बट समवेयर वो चाइल्डहुड है ना, उसने बहुत कुछ सिखाया, यू नो, जो बचपन है ना, जब आप मुंबई के चौल में रहोगे बचपन, वहाँ से जो आना ना, वो आपको हम्बल कर देता है, यू नो, आपको हमेशा वो ग्राउंडेड रखता है। तो आज भी हम वहीं जाते हैं, इवन गणेश चतुर्थी होती है जब, आज भी हम वैसे ही नाचते हैं, तो कभी कभी मम्मी बोलता, अरे तू फौजी ऑफिसर है, अरे काय का फौजी ऑफिसर, यू नो, दैट हम्बल्ड मी।
सर, नेवी में भी ह्यूमिलिटी यूज होती है?
काफ़ी हद तक, बिकॉज आप कहीं पे भी जाओ, नेवी हो, कॉरपोरेट हो, मेरा मानना है कि यू डील विद पीपल, आप लोगों, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, you know? नेवी भी लोग ही चलाते हैं, एंड अगर आप में वो हम्बलनेस, एम्पथी नहीं आई, तो वर्दी, मेरा मानना था जब मैं वर्दी में था या व्हेन आई यूनिफॉर्म पहनता था, तो झक मार के लोग सल्यूट मारेंगे। पता था अगर नहीं माना तो, हमारे इसमें एक बहुत प्यारा सा फ्रेज है, इफ यू डोंट गेट रेस्पेक्ट, डिमांड रेस्पेक्ट, वे एक बोलते थे फौज में, हाँ, एकेडमीज में हम सीनियर होते थे, बट मेरा मानना पूरा उल्टा था। मेरा मानना ये था कि यार यही हमें सिखाते हैं, यू नो, बहुत सारे जो सेलर्स हमारे आते हैं, दे आर ऑल गुड, प्रोबेबली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, उन्हें वो टाइम पे जब वो फौज ज्वाइन कर रहे थे, शायद गाइड करने के लिए कोई नहीं रहा होगा, कि आप ऑफिसर एंट्री में चले जाओ या NDA के थ्रू, कोई नहीं होगा। लाइक आई वॉज लकी कि जो मुझे एक बंदा जो मुझे गाइड किया वो अफसर निकला करके मैं बन गया अफसर, नहीं तो मुझे भी क्या पता कि सेलर क्या था अफसर क्या था करके।
सर जिन लोगों को मिलिट्री के बारे में बहुत कम जानकारी है उनको आप आर्मी और नेवी की डिफरेंस कैसे समझाओगे? बहुत रुकी सवाल है आई नो, बट लोग मिलिट्री के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं। आई फील कि आम जनता मिलिट्री के बारे में ज्यादा
नहीं जानती। सही बात है, सही बात है। आई जस्ट गो टू अ बैकग्राउंड।
श्योर।
क्योंकि मेरा पहला प्यार जो बोलता आर्मी था, बिकॉज नेवी पता नहीं था। सिंपल, जैसे आज हम बात करें, सो आई एम बॉर्न इन 1976, यू नो, तभी। और हम जब पैदा हुए थे, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब हम ग्रो अप कर रहे थे, तभी एक बहुत प्यारा सा सीरियल आता था, फौजी, शाहरुख खान। फौजी ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया, और एक परमवीर चक्र ऐसे दो सीरियल आता। तो शाहरुख खान की जो मूवी आई थी उसने, मूवी नहीं सीरियल थी, उसने बहुत मोटिवेट किया। तभी ऐसे लगता उसकी जो वर्ड, एक आर्मी का जो लाइफ दिखाता था अंदर, ये क्या वो क्या। मुझे नेवी का तो कुछ अता पता नहीं था। ओनली थिंग वॉज, जहाँ मैं बॉम्बे में रहता हूँ, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड भांडुप एंड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कांजूरमार्ग। सो कांजूरमार्ग में देर इज अ नेवल कॉलोनी, एक नेवल कॉलोनी है, प्यारा सा, नेवी के सिविलियंस की कॉलोनी है वो। तो क्या होते थे वहाँ, लाइक एनी कैंटोनमेंट, उनके वहाँ अंदर ग्राउंड, मस्त ग्राउंड है। तो हम लोग जो बाहर रहते थे स्लम्स में, या हमारा अट्रैक्शन वही होता कि ना संडे को सलाह जाके खेलो अंदर, ह्यूज ग्राउंड। फिर हम फानते थे, वी न्यू पेरीमीटर पे, और ये सिविलियन कॉलोनी थी तो इतना सिक्योरिटी नहीं था। तो हम एक सूखा गटर होता था जिसमें से हम जाते थे अंदर, जैसे अभी टेररिस्ट लोग आते हैं ना वहां से, ऐसे हम भी यहाँ घुस जाते, एंड हम लोग खेलते थे अंदर। तो जो पॉजिटिवनेस बोलते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड जो हम बोलते हैं ना ये वो बड़ी बड़ी बातें, MBA जो कराते हैं, एटीट्यूड होना चाहिए। सो ये सब वहीं से आया, क्योंकि हमें पता था कि ना 30 दिन में अगर आप 30 बारी खेलते हो संडेज, यू नो, 2 बार आप पकड़े जाओगे, और पकड़े जिस दिन जाओगे आपकी ले लेंगे करके, लिटरली। और बट 28 दिन तो तुम खेल पाओगे करके। सो विद दैट बिलीफ हम लोग जाते थे अंदर। एंड फर्स्ट टाइम जब रेड पड़ी वहाँ पर, ग्राउंड पे रेड होती थी, वो नेवी वाले आते थे एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन के, एक बार ऐसे रेड में पकड़े गए। तो जब वो रेड में पकड़ा गया ना, तो बाकी के लोग भाग गए, मैं पकड़ा गया फ्रेंकली, और उस दिन रगड़ दिए लिटरली ना, दे पनिश यू, रोलिंग कराते, ये कराते, एंड देन ऑफकोर्स दे लेट यू गो। बट वो इम्प्रेशन कहीं ना कहीं रह गया कि जाना कैसे है करके। तो आज भी अभी मैं बहुत यंग लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, यू नो, थैंक्स टू लॉकडाउन एंड कोविड। तो एक वो अलग एक जरिया खुल गया कि इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ से बच्चे कनेक्टेड है। तो ये बहुत सारे बच्चों को आज भी नहीं मालूम है आर्मी नेवी का डिफरेंस, एयरफोर्स क्या है।
बट ट्रेनिंग में फर्क क्या होता है सर?
ट्रेनिंग में यू नो, लाइक आप एकेडमीज जो होती है ना, सी 3 कैटेगरी होती है, ऑफिसर, सेलर्स एंड देन दी सिविलियंस। तो डिफेंस में भी देर आर सिविलियंस, आप सिविलियन रोल पे जा सकते हो। सो दिस आर दी 3 कैटेगरीज।
क्या करते हैं सिविलियन?
तो सिविलियंस कैसे होते हैं कि अभी कोई जैसे कोई भी बड़ा यूनिट होगा वहाँ पे, अलग अलग रोल्स होते हैं उनका, जो अगर फौजी वाले, वर्दी वाले नहीं कर पाते हैं। सो देर आर वेरी टेक्निकल रोल, छोटे छोटे रोल्स है, और अच्छे बड़े बड़े रोल्स भी है जहाँ लोग जनरल मैनेजर लेवल तक भी आ जाते हैं। तो ये रोल उनके लिए है। तो ऐसे 3 रोल है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग की भी अकेडमी होती है, सेलर्स ट्रेनिंग की भी अकेडमी होती है। और डिफरेंस ये होता है कि अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की ऑफिसर ट्रेनिंग लो तो एवरीथिंग इज सेम, बिकॉज वी कम फ्रॉम NDA। NDA सी, आप पहला कब जाते हो? 12वीं का बाद जाते हो। 12वीं के बाद आप फर्स्ट टाइम यू गो टू, आइदर यू हैव अ चॉइस ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी और इंडियन नेवल अकेडमी, INA। इन दोनों की एग्जाम 12वीं के बाद होता है। एंड वंस यू गो इन टू दैट NDA में जाने का, तो आपका जो 3 ईयर्स की ट्रेनिंग होती थी पहले, अभी 4 है, ट्रेनिंग पैटर्न एवरीथिंग इज सेम, आपकी उतनी लगती है, यू नो, उतनी लगती है। ट्रेनिंग इज डिफरेंट, यू नो, और आप आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई भी हो, योर बेसिक ट्रेनिंग इज सेम। फिर जैसे जैसे आप यू नो, व्हेन यू कम आउट, देन आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। जब आप 4th ईयर में जाते हो, पहले 3rd ईयर होता था, या जब आप डायरेक्ट एंट्री से जाते हो, तो फिर आपको स्पेसिफिकली आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए ट्रेन करते हैं। देन देयर आर इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी। अगर जो कॉमन 12वीं के बाद जो NDA से लड़के आते हैं, अभी तो लड़कियां भी आएंगी, एंड सच अ ब्रेव डिसीजन आई एम सो हैप्पी कि अभी पहला स्क्वाड्रन आएगा लड़कियों का. तो ये लोग सब जब बाहर आते हैं तो कोई आर्मी किसी ने लिया होता है, किसी ने नेवी, किसी ने एयरफोर्स, तो फिर वो अपने अपने एकेडमी चले जाते, आईएमए चले जाते, फिर आईएनए चले जाते, फिर एयरफोर्स एकेडमी चले जाते, एंड देन ऑफकोर्स दे आर ट्रेन फॉर दैट. तो जैसे अभी आर्मी में ये ऑफिसर वाला चक्कर हो गया, देन देर आर सेलर्स एंड जवान्स एंड एयरफोर्स में भी जो एयरमैन होते हैं इनका अलग सेटअप होता है, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है फॉर यू नो फॉर द जूनियर लीडरशिप रोल्स. एंड
आई एम अज्यूमिंग कि नेवल ट्रेनिंग में मोस्टली इट्स लाइक रिलेटेड, आई मीन इट्स ऑब्वियस, बट रिलेटेड टू शिप्स, रिलेटेड टू वाटर, स्विमिंग.
सही बात है.
और क्या होता है, मतलब और कौन से स्किल सिखाते हैं?
सो सी नेवी कैसा ना, अगर आप अगर किसी एक सिटी ले लो, कोई एक सिटी, एक कोई भी सिटी ले लो, जैसे आपने विराट दिया होगा, अभी जैसे नया विक्रांत इज कमिंग, कमिशनिंग हो रहा है उसका, तो विक्रांत विराट आदि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर, व्हेन वी से, जैसे मैं विराट पे था, यू नो आई वाज पोस्टेड देयर फॉर फ्यू मंथ्स. विराट तो साला अपने आप में एक सिटी है, मतलब आप अंदर अगर चले जाओगे तो खो जाओगे, दो तीन महीने तो आपको उसमें ओरिएंटेशन में लगता है, इतना बड़ा जहाज है, यू नो. देन इनकी स्पेशलिटी, बिकॉज दे आर एयरक्राफ्ट करियर, तो इसके ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो फाइटर क्राफ्ट्स होते हैं,
जैसे टॉप गन में दिखाया.
हाँ, वैसे वैसे. सो यू नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे विल हैव टू, वॉर्स वगैरह में दिस आर दी प्लेटफॉर्म्स यूज्ड ऑन सी. तो विराट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. ये तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर इज वन टाइप ऑफ शिप. देन देर आर यू नो दी छोटे छोटे अटैक क्राफ्ट होता है जिसका स्पीड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स.
अटैक क्राफ्ट मतलब एक बोट होती है.
हाँ, इट्स लाइक अ बोट. इट्स लाइक अ बोट, उसमें भी एक कैप्टन होता है, उसका क्रू कम होता है, बट दे आर सपोज टू दी फ्रंट लाइन, कहीं पे कुछ हो गया दे विल बी दी फर्स्ट वन टू गो.
आईएनएस विराट के बारे में और कुछ बताइए सर.
सो विराट कैसे कि विराट जैसे मैंने बताया ना, इतना ह्यूज है. सो विराट हैज गॉट, जैसे आप बोलोगे उसके अंदर खुद का एटीएम है उसका, यू नो बैंक है, एवरीथिंग इज दैट, देयर इज एमआई रूम, मतलब मेडिकल रूम है, एंड देयर आर ह्यूज प्रोपल्शन सिस्टम, इंजन रूम्स इतने हैं, यू नो, एंड इट्स फन बिकॉज इट हैज गॉट लेगेसी. विराट हैज गॉट लेगेसी बिफोर इट गॉट डीकमीशन, एंड पहले जो विक्रांत था. सो
सर किस बेसिस पे डीकमीशन होता है?
सो डीकमीशन कब होता है, लाइक यू नो लाइक All of us retire. हम सब रिटायर हो जाते हैं ना एक टाइम के बाद. तो रिटायरमेंट का क्राइटेरिया कैसे होता है कि 60 साल, तो फिर 58-60, फिर कोई कोई अगर बहुत अच्छा होगा या उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो उसको 5 साल 6 साल 10 साल और खींचते हैं, जैसे रिफिट्स करा करा के. तो वैसे चेंज होकर 10-20-25 साल के बाद उसकी एफिशिएंसी, उसका स्पीड वगैरह कम हो जाता है, यू नो व्हाट यू डिजायर. सो दैट इज द टाइम व्हेन इट गेट डीकमीशन.
सर एक्चुअली अगला सवाल जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड है. हर कोई जानता है, स्पेशली ये पॉडकास्ट के लिसनर जानते हैं कि जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है आजकल ग्लोबल स्टेज पे. कोई कोई लोग ये मानते हैं कि वी आर हेडिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ हॉट वॉर. आई वुड लाइक टू बिलीव नॉट. दो सवाल है आपके लिए. पहला, एज अ नेवी मैन डू यू अग्री कि कुछ हॉट वॉर जैसा सिनारियो हो सकता है अगले 5 सालों में?
अगला जो वॉर होगा ये ऐसे फिजिकल या ये नहीं होगा, इट वुड बी मोर ऑफ अ इंफॉर्मेशन वॉर, आपकी सिक्योरिटी की, डेटा सिक्योरिटी की वॉर होगी. सो यस, मतलब सतर्क तो रहना है, हम सबको सतर्क तो रहना है.
मैंने जियो पॉलिटिक्स के बारे में इसी पॉडकास्ट के थ्रू सीखा है, अभिजीत चावड़ा सर से बात कर करके पर उन्होंने मेंशन किया था कि बेसिकली आज के जियो पॉलिटिकल सिनारियोज में Whoever controls the ocean controls the war.
Exactly.
क्योंकि अगर आप युद्ध के बारे में बात करें, वॉर इज वन बाय लॉजिस्टिक्स. अगर आप लॉजिस्टिक्स कंट्रोल करेंगे तो लाइकली आपको एडवांटेज मिल जाता है वॉर में.
True.
और मोस्टली सिविलियंस को ये भी पता है कि नेवी इज एट द फोरफ्रंट ऑफ आर विनिंग स्ट्रैटेजी.
Very true.
तो ये सर जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, एज अ नेवी मैन आप समझा सकते हो कि वाई इज नेवी एट द फोरफ्रंट ऑफ अस विनिंग और लूजिंग? हमारी जीत या हार नेवी से डिसाइड क्यों होगी?
सी इवन जब व्हेन यू हैव सीन कारगिल वॉर जब हुआ था या 1971 की वॉर हुई थी, सो कारगिल वॉर में नॉट मच इज सेड अबाउट ऑपरेशन तलवार, यू नो. एंड वन ऑफ द रीजन, एक रीजन ये भी था कारगिल वॉर का, यू नो फाइनली जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई में, जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई अगस्त जब वो वॉर खत्म हुआ, वन ऑफ द रीजन वॉज कि नेवी पूरा घुस गई. एंड यू नो 33 ships ऑन द माउथ ऑफ कराची. 33 ships, ये भी नहीं कि चुपके बैठे हम, अनाउंस कर दिया हमने दुनिया के बॉस तेरे मुंह पे बैठे हम करके ना, अब जो करना उखाड़ना उखाड़ ले टाइप्स. एंड दैट इज व्हेन इवन हम जब 1971 की बात करते हैं, ठीक है, यू नो आर्मी हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले, और कारगिल में भी देखा तो बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड कारगिल वॉर पहला कि बिकॉज वो जो एरिया था कारगिल द्रास वो जो सेक्टर है एंड प्राइमरली वहां से हुआ. बट व्हेन जब नेवी ने यहां से घुस के उनकी पूरी लॉजिस्टिक्स बंद कर दी पाकिस्तान का, तो कहते हैं कि जैसे एडमिरल सुशील कुमार साहब जो थे उनकी किताब में देयर इज अ बुक ऑन दैट, कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का राशन पानी बचा था और फ्यूल बचा था, यू नो, एंड उसके बाद उन्होंने उनके पूरे जहाजों को बोल दिया कि कट लो नहीं तो ठोक देंगे ये लोग करके.
एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन तलवार आप कुछ ऐसे शेयर कर सकते हो हमारे साथ?
सो मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि ना पहले तो मेरे लिए शौक था कि मैं ऑपरेशन तलवार में हूँ, बिकॉज हम लोग पास आउट हुए 1999 जैसे एकेडमी से पास आउट हुए, तो आप एकेडमी में लग चुकी होती है आपकी सब जगह से ना ऐसे होता है ना कब निकले हम यहाँ से ना, सॉरी मैंने गाली दिया, तो कब निकले यहाँ से, एंड देन आप वो दिन का वेट करते हो ना कि आप फीती पहने एंड यू नो जस्ट कमिंग बैक टू दैट, वो जो एक्सपीरियंस होता है ना फीती जिस दिन लगने का, देयर इज समथिंग कॉल्ड पासिंग आउट परेड. पासिंग आउट परेड का बिकॉज मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मैं वो मोमेंट अभी यहाँ बैठे बैठे ना वो मोमेंट मुझे याद आ रहा है, बिकॉज आपका एकेडमी का जो टाइम है डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ तो आपका जो एक आध जो साल होता है आपकी पूरी लग चुकी होती है एंड देन आपको ऐसे होता है ना साला कब निकले यहाँ से, एंड देन वो लास्ट डे पासिंग आउट परेड होता है. सो पासिंग आउट परेड में कैसे होता है ना कि आपके पेरेंट्स आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको बिलीव होता है अरे चलो मेरा बेटा या बेटी है अंदर करके, यू नो दे आर डूइंग, एंड देन आप ऐसे फाइनल जब परेड होता है सो आप मार्च करके जाते हो ऐसे धीरे धीरे चाल बोलते हैं धीरे चाल में, एंड ऊपर से आपका जो चॉपर्स जाते हैं दे शावर फ्लावर ऑन यू, फूल बरसाते हैं आपके ऊपर, एंड एवरी क्राइज बिकॉज वो जो खुशी की आंसू है या दुख का आंसू है नहीं पता. खुशी की आंसू इसके लिए कि साला यहाँ से निकल रहे, और दुख का आंसू इसके लिए कि ना स्पेशली फॉर आर्मी गाइज बिकॉज नेवी में, बिकॉज नेवी में स्टिल यू नो हमारी जो पोस्टिंग जहाजों पे होती है हमारी जो फैटल रेट होता है लाइक यू नो कोई कोस्टमेट का डेथ वगैरह बहुत कम होता है. आर्मी में जब वो जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि अगला एक आध साल में हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हम ऐसे मिलेंगे कि यू नो कोई शहीद हो गया, शहीद नहीं कोई फेल इन लाइन ऑफ ड्यूटी ऐसे हो गया, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही होते हैं. बट देन फॉर एवरीबडी सब रोते हैं मिक्स इमोशन होता है, फिर आप ऐसे शावर बैठ, तो मैं सबको यही बोलता हूँ ना दुनिया का ना सबसे बड़ा अंबानी हो अड़ानी हो ये सारे लोग पैसा एक करके ये कर ले, वो उनके बच्चों के लिए ना वो मोमेंट खरीद नहीं सकता. तो आपके पेरेंट्स खड़े होते हैं तो ट्रेडिशनली बोलते हैं मदर लेफ्ट में खड़ी रहती है, फादर का तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं होता, चल साइड पे हो जा राइट साइड पे फादर, बिकॉज मदर इज क्लोज टू हार्ट. ये एक ट्रेडिशन है कि मदर क्लोज टू हार्ट है तो मदर लेफ्ट में खड़ी रहेगी फादर राइट में. फिर एक वो ब्यूगल बजता है, एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग बजता है, उसके साथ फीती खुलती है, ऐसे सफ़ेद कपड़ा होता है फीती खुलता है, एंड देन यू आर जब आपका स्ट्राइप, नेवी में स्ट्राइप्स होता है उसमें तो स्टार लगता है, आर्मी में जब आपका स्ट्राइप दिखता है गोल्डन, एंड देन यू आर आपको दे दिया जाता है नेशन के लिए कि ये मेरा बेटा या बेटी नहीं आज से, ये मेरा देश का हो गया करके, यू नो यू आर नो मोर द सन एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो. और फिर एक ओथ हम लेते हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट. तो हमारे केस में क्या हुआ, तब कारगिल वॉर वॉज एट द पीक और मेरे ही कोस्टमेट थे जो आर्मी के, लाइक सौरभ, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया हु इज अ वेरी फेमस स्टोरी बिकॉज सौरभ इज माई बैचमेट. तो उनका कारगिल वॉर जो चालू हुआ था सौरभ के डेथ से चालू हुआ था, बिकॉज सौरभ और उनके यूनिट के 4 लोग पेट्रोलिंग के लिए गए थे, तो जब पता चला उनको कि सी वहाँ कहीं ना कहीं हम फेल हो गए थे इंटेलिजेंस के लिए, तो वहाँ के जो चरवाहे होते हैं ना उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ कप हो रहा है भाई करके आप देख लो करके. तो पहले हमने विश्वास नहीं किया बिकॉज एक ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान ने साइन की है कि अक्टूबर में जब ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो यू विल यू नो वैकेट दैट स्पेस. और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे यू नो प्राइम मिनिस्टर, सो दैट टाइम वो बहुत बहुत वी ट्राइड आवर बेस्ट कि ना पीस आ जाए करके, ओ नवाज शरीफ एंड एवरीवन वाज ट्राइंग एंड वहाँ परवेज मुशर्रफ वाज बजा रहे थे पीछे से आके, हमने वैकेट किया था एंड दे ऑक्यूपाइड वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. जब पता चल गया कि ये लोग घुसपैठ हो गए अंदर, इट वॉज टू लेट. तब सौरव वेंट व्हेन आई एम कमिंग बैक व्हाई आई नरेटेड दैट कि सौरव और चार लोग को बोला कि जाके देख क्या ये लोग बोल रहे हैं कोई तो है, और फिर सौरव वापस नहीं आया और जो चार पांच दिन सौरव डिडंट कम देन अनदर यूनिट वेंट कैप्टन अमित बोल के अमित एंड वन मोर ऑफिसर एंड और ये लोग उनको ढूंढने गए। तब जाकर पता चला जब अमित और वो लोग वहां पहुंचे उन पे भी बहुत गोली बरसाई तब पता चला कि कुछ तो फकअप हो गया यहाँ। एंड देन बाद में जब सौरव का व्हेन सौरव वाज रिकवर्ड और जो चार उसके साथ बंदे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर हुआ था इतनी बुरी तरह से सौरव के बदन पे सिगरेट बर्ड्स आंखें बाहर निकाल दी थी एंड ऑल सो एज अ कोस्टमेट वी ऑल फील सो बहुत ये लगता है दो आर्मी का है वी हैव नेवर मेट बट वी आर ऑल कोस इक्विवेलेंट। तो तब वैसे दैट्स व्हाई द कारगिल वॉर स्टार्टेड। तो हम लोग जब यहाँ आ गए तो हमारे यू नो सडनली हमें बोल दिया कि ये सब बिकॉज इट वॉज एट पीक बोला कि अभी जो तुम्हारे सबकोसेस जो है ना तुम्हारे हनीमून पीरियड थम्बा अब तुमको हम जहाज अटैचमेंट पे भेजते हैं करके।
Why did the Pakistani army torture?
See, as per the Geneva Convention, कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं वॉर में भी when you are, you know, तो आपको जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW बनाते हैं तो यू आर सपोज टू बी ट्रीटेड इन अ वेरी फौजी जैसे बिहेव करना चाहिए बट ये लोग मान ही नहीं रहे थे ना कि ये घुसपैठ किए करके दे वेर टोटली क्लेमिंग कि हम है ही नहीं करके ये कोई और है करके। सो जब पकड़ लिए तो ब्रुटैलिटी यू नो ब्रुटैलिटी प्योर ब्रुटैलिटी ऐसी करना था करके। दैट डे उस दिन हमने कसम खाई कि ना साला गोली तुमने पहला चलाया है लास्ट वाली गोली कब चलेगा वो हम डिसाइड करेंगे। दैट वॉज द स्टैंड हमने जो लिया नेवी आर्मी एयरफोर्स यू नो एंड बजा दिए फिर उसके बाद तो एंड हैट्स ऑफ टू यू नो दी आर्मी गाइज जो भी वहाँ पे जो लड़े इतना जैसे मैं बताऊँ ना इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज आप पहाड़ पे बैठे हो आप पाकिस्तानी जो है सब साले पहाड़ पे बैठे वहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं गोली मार रहे एंड गाइज रियली रिक्वायर गट्स एज अ यंग जितने भी 547 पर्सनल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम वेर इंजर्ड वो गट्स चाहिए होता है कि ना नीचे से आप मोटिवेट कर रहे हो ऊपर जाने के लिए रात को ये वेदर में आपके पास ढंग के यूनिफॉर्म भी नहीं थे तभी मतलब यू नो द जो विंटर क्लोथिंग होता है और आपका खाना नहीं शक्करपारा एंड ऑल यू टेक एंड यू डोंट नो कि आप कब पहुँचोगे इन सब के बावजूद अगर आपको किस साला किसी को मोटिवेट करना है एंड दैट टू एट द एज ऑफ 22-23 एंड ऑल ऑफ देम वेयर 22-23 इट रिक्वायर्स गट्स यू नो एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद इंडियन आर्मी। आई एम श्योर विवेक ने भी बोला होगा अलग लेवल का मोटिवेशन होता है यू नो एंड यही लोग वॉर जीत के आए हमारे लिए ऑल ऑफ देम। ठीक है वी प्लेड आवर पार्ट एज नेवी इन अ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक यू नो कीपिंग वो सबको ये बट इट रिक्वायर्स गट्स यू नो एंड सारा एवरेज एज कहते हैं ना एवरेज एज वाज 24-25।
आर नेवी मैन समटाइम्स सेंट ऑन लैंड बैटल्स?
सो हमारे अटैचमेंट होते हैं एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेज जैसे मार्कोस वगैरह हुआ तो यू हैव एन डिटैचमेंट एट कश्मीर में एक वुलर लेक बोल के जगह है वहाँ डिटैचमेंट होता है। अदरवाइज वी हैव जॉइंट एक्सरसाइजेस यू नो आर्मी वाले जहाज पे आते हैं हम जाते हैं उनके इस पे बट इन दिस स्पेसिफिक केस जैसे कारगिल वॉर में वी वेर गिवन अ स्पेसिफिक टास्क कि हम लोग यहाँ थे तो दैट इज हाउ आई लैंडेड शिप पे। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हमारा अर्ली कर दिया सब पर एंड देन आई रिपोर्टेड टू दिस शिप यू नो INS कृपान बोल के P-44 बोल के किलर क्लास ऑफ शिप बोलते हैं हम इसको। तो वहाँ पर जब पहुँचा फर्स्ट डे एंड दिस शिप वॉज फ्रॉम द ईस्टर्न फ्लीट सो ईस्टर्न वेस्टर्न और सदर्न फ्लीट होता है तीन ऐसे फ्लीट तो ये शिप विशाखापट्टनम बेस्ड है तो हम लोग को बोला कि बॉम्बे जाके आप लोग इस पे चढ़ जाओ और तब तक कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है कि अपने को इंटरेस्टेड था माई वाइफ नाउ ऑफकोर्स जो अभी मेरी बीवी और मेरी गर्लफ्रेंड थी तभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सीरियसली एंड अपना इंटरेस्ट ये था कि बॉम्बे आए तो भैया गर्लफ्रेंड से मिलते हैं पहले करके ना अपना तो इंटरेस्ट वही था कि बॉम्बे आने का बट देन वी वेर टोल्ड कि यू हैव टू रिपोर्ट ऑन शिप। जूनियर मोस्ट हो एकेडमी से निकले थे फ्रेश तो वैसे बाल विल सब भी ऐसे छोटे छोटे आप पहली बार जहाज पे लैंड कर रहे हो आपने जहाज कभी देखा नहीं है एक बार सिर्फ एकेडमी से हम देखे थे दूर दूर से एक बार आके सब ऐसे एंड व्हेन यू रीच देयर आप देख रहे हो एक एंड जो मेरी शिप थी इट वाज नॉट अ बिग शिप यू नो और सिंस इट वाज वॉर रेडी तो ऐसी हलचल एंड एवरीवन वाज सो बिजी. तो आप जब जाते हैं ना, आपको ऑफिसर्स मेस देते हैं, तो यू हैव ऑफिसर्स मेस एंड सेलर्स मेस इन दैट शिप. और आई वॉज गिवन अ प्लेस कॉल्ड मिसाइल रूम, एक PLCP बोल के कंपार्टमेंट होता है, जहाँ मिसाइल रूम के कंट्रोल रूम के बाहर एक छोटा सा AC मस्त होता है. तो मैं और एक मेरा एक जूनियर था, एक हु वॉज गोइंग टू बी एन ऑफिसर, एक मिडशिपमैन होता है, हम लोग दोनों को वहाँ फेंक दिए कि ब्लडी गो देयर एंड स्लीप करके ना, ऊपर नहीं आना. बिकॉज पहला 7-8 दिन इज सी सिकनेस. नाउ सी सिकनेस इज सो टफ बिकॉज आप ना एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो. जैसे हम यहाँ बैठे, उस शिप ऐसे थे, और एंड इमेजिन जुलाई मंथ, जब आपका सी सो बैड, बारिश होता है, सब कुछ होता है, एंड सी सो बैड, तो आपको यूज टू होने के लिए 7-8 दिन लगता है. सो हम लोग का काम यही होता था कि नीचे से आते एकदम ऐसे, ऊपर आता, वॉमिट करते, फिर चले जाते वैसे. फिर वो कोई शाम को सम गुड सीनियर, एक सीनियर होता है सब जगह आपका, तो मेरे भी एक सीनियर था, एक लेफ्टिनेंट वॉज अलॉटेड कि तू देखेगा उसको करके ना, इज अ जूनियर. दैट्स अ कल्चर, यू नो, दैट्स अ कल्चर कि ये तेरे अंडर है करके, इज अ बेबी अंडर यू, सो टेक केयर ऑफ हिम. तो वो किसी स्टीवर्ड को भेजता था खिचड़ी लेके, तो हम खाते थे फिर सो जाते थे, एंड वही काम था 7 दिन, फिर वॉमिट मारते थे फिर ये. तो एक दिन ऐसा स्टेज आया, आई वॉमिटेड ब्लड, पूरा मुंह से ऐसे खून, क्योंकि आपके पास वॉमिट कर करके अंदर का जो ये होता है ना, ये सब फट के मुंह से खून आता है. तो पूरा मुंह से जब खून आया, तब लग गई, बोलो मैन आई एम गोइंग टू डाई, ये क्या हो रहा है करके, पता नहीं ना, ऐसे भी होता है. सो आई वेंट टू माय सबाल्टन जो है उसके पास, तो मैं बोला सर मुंह से खून आ रहा है. वो ऐसे देखे, वो ऐसे गले लग रहा है ऐसे ना एकदम झप्पी देखे, वेलकम टू द सी. बोले क्या पता चल रहा है, वेलकम टू द सी. दैट इज द टाइम आई केम टू नो कि देयर इज अ ट्रेडिशन, कि अगर आपके मुंह से खून आ गया उल्टी कर करके, दैट मीन्स सी हैज एक्सेप्टेड यू. देन वो एक ही हुआ, बोला अरे ऐसे होता है कि साला सी हैज एक्सेप्टेड यू. एंड देन ही सेड दिस थिंग, बोला कि डू यू नो वेयर दिस शिप इज हेडेड, या हम कहाँ जा रहे हैं करके. तो मैं बोला नो सर, नॉट मच आइडिया. बोलते ओके यू आर हियर फॉर वॉट, आई सेड 1 month अटैचमेंट. तो बोला ओके वेलकम देन, सो वी आर गोइंग फॉर अ वॉर करके. तब मैं जब बोलता हूँ ना कि सो जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, कि आपको बोलता है कि आप वॉर में जा रहे हो, लोग खुश है वॉर में जा रहे हैं, भैया फटती है सिंपल सी. बिकॉज फियर इज एन इमोशन, फियर जो इमोशन है ना, पहला इमोशन इज फियर. आप बाकी अगर कोई बोले ना फियर नहीं होता, झूठ बोलते हैं, नो? नहीं तो देर इज अ वेरी फेमस सेइंग ना, कि इफ़ यू डोंट हैव फियर, आइदर यू आर टेलिंग लाइज और यू आर अ गोरखा करके. बिकॉज गोरखा जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ करके. सो दैट फियर इज एन इमोशन. तो पहला जब बोला ब्रेकफास्ट होके, वेन आई वॉज गोइंग डाउन केबिन से, आई वॉज लॉस्ट इन माई थाट. मेरा पहला पूरा यही हो रहा है कि यार 22 साल का हूँ मैं करके, एंड तुम मुझे वॉर में लेके जा रहे हो. सी 1971 के बाद, इट वॉज 1999, आपको 28 साल के बाद ऐसा वॉर में, यू नो यू आर गोइंग टू गेट अ फुल फ्लेज, यू आर गोइंग इन दैट टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन. बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, दे वुड नॉट हैव सीन द वॉर सिनेरियो पर से, बहुत सारे लोग, यू नो. यहाँ साला लाइफ का पहला एकेडमी से बाहर आए, एंड यू आर इन दैट शिप, एंड देन यूफोरिया टेक्स ओवर. उसके बाद तो यू नो बोलते हैं ना कि यार इसी के लिए तो आए थे फौज करके. फिर हम जब कोस्टमेट्स, कभी एक बाजू वाले शिप में मेरा एक कोस्टमेट था बाजू वाला, लाइक बिकॉज शिप एक दूसरे के बाजू में सेम क्लास ऑफ शिप था, तो आई यूज टू मीट हिम ऑफन, एंड देन वी यूज टू से कि अरे इसी के लिए तो आए थे फौज में ना, जो भी है, जो भी जितना भी साल होगा, एंड दैट यूफोरिया टेक्स ओवर. उसके बाद तो जैसे मेरा देयर इज अ रील ऑफ माइन विच इज़ वेरी फेमस, और मैंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि ना हम तो साले कराची का टिप लाइट ऐसे दिखता था, कराची का लाइट, वी वर एट ओखा साइड ना, बोलता ऐसे किस मार देना साला उड़ जाता करके, यू नो दैट वाज. बट ठीक है, सो जो भी ऑल दोज हु वर देयर, जो फ्रंट लाइन में थे, सो वी ऑल बिकेम पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन तलवार. इसलिए आई वेयर दैट कारगिल वॉर मेडल ना, स्टार एंड द अदर मेडल.
दो थोड़े से इंटेंस सवाल पूछना चाहूंगा, डोंट आंसर इफ यू डोंट फील लाइक सर. पहला सवाल यह है कि आर देर नेवल बैटल्स इन द वर्ल्ड विच आर नॉट रिपोर्टेड एट ऑल बिटवीन कंट्रीज?
सी देर आर ऑलवेज जो यू नो देर वुड बी सम और द अदर स्पाई सबमरीन्स ऑलरेडी देयर, यू नो, कहीं ना कहीं रहता ही है,
मतलब अंडर वाटर बैटल्स होते जाते
हैं. हाँ, वो दैट्स अ थिंग विच हैपेंस, यू नो. मेनी अ टाइम सडनली हमने पेपर न्यूज वगैरह में आएगा कि यू नो अ पाकिस्तानी सबमरीन डिटेक्टेड और चाइनीज सबमरीन और इंडियन सबमरीन. सो दैट वॉरफेयर कीप्स ऑन गोइंग, यू नो.
बट उसका लॉजिक क्या होता है, व्हाई?
Probably, you know, it's a strategy thing which every country plays. You know, जो strategic level पे होता है कि you have to have that करके.
Control over this part of the
probably,
ocean.
Probably.
और दूसरा सवाल थोड़ा सा paranormal सवाल है, क्योंकि बाहर काफी सारे paranormal discussions हो रहे थे. Ocean related paranormal सवाल है. जैसे बहुत लोग giant squids के बारे में बातें करते हैं या these magical ocean creatures. कहा जाता है कि most of the ocean is not even explored.
Exactly.
आप ये मानते हो? You're a navy
man. I totally relate to that, because हम बोलते हैं ना कि हमने जो देखा है ना, what we have seen, जो एक कहावत है ना कि हम जो देखे सिर्फ only 10%, then 90% to be explored. हमने जो देखा है सिर्फ 10% 15% अभी देखा है.
आपने कुछ अजीब देखा?
तो मैंने जब when I was in ship, जैसे यही टाइम पे when I was during my second stint when I was in ship, तो ये जो जहाज थी, this was a fleet tanker, you know, fleet tankers सबसे ज़्यादा sail करती है fleet tanker, because they are supposed to be huge ships with सारे जहाजों को, you know, तेल देना होता है, that is the primary role, and then it goes on and you don't get to come on shore जल्दी when you are sailing. बाकी जैसे छुटपुट ship होते हैं या warships होता है, they come alongside, आप बाहर जा सकते हो. यहाँ वो प्रिविलेज नहीं होता है. मेनी अ टाइम यू आर एट दैट, एंड कभी कभी लंबी लंबी सेलिंग होती है. एंड ट्रस्ट मी जो जब आप पानी में अकेले होते हो ना, रात को एक जहाज होता है, एक चांद होगा और एक ही होगा, यू फील फकिंग स्केरी. मतलब जब आप बाहर ऐसे देखोगे तो आपको एकदम अजीब सा बहुत सारी फीलिंग्स होगी, यू नो. और कहते हैं ना, लाइक आई वोंट नेम, बट मुझे वो वाइब्स बहुत आते थे वहाँ पे ओशियंस पे ना, जब मैं जाता था. इसलिए जनरली रात को सब अकेले नहीं निकलते थे. एंड आर शिप हैड एन एक्सीडेंट ऑल्सो, देर वॉज सम, बहुत सारे, हर शिप में कोई ना कोई स्पूकी कहानी होती है कि ये कोने पे नहीं जाना है, वो कोने पे नहीं जाना है करके. सो दैट एक्सपीरियंस, यू गेट अ डिफरेंट वाइब, यू गेट अ डिफरेंट.
आपकी पोस्ट नेवी लाइफ के बारे में बात करते हैं सर.
अच्छा,
व्हाई डिड यू चूज टू लीव नेवी?
हमेशा ये था कि मुझे फौज से बहुत प्यार था और यूनिफॉर्म में कंटिन्यू कर, आई वाज डूइंग गुड. मैं मेरे बैच का वन ऑफ दी, यू नो, गुड रैंकिंग्स में था. डेकोरेशंस थे सारे, यूनिफॉर्म डेकोरेटेड थे. मैं चाहता तो कंटिन्यू कर सकता था, और बहुत सारे ऑफिसर्स ने मुझे बोला भी कि डोंट लीव, यू हैव गॉट अ गुड करियर करके. बट क्या होता है ना, हमारे ज़माने में वो लाइक माई वाइफ वॉज वर्किंग, उसकी भी करियर थी, यू नो. और एक ही ड्रॉबैक ये होता है कि फौजियों का, कि यू कीप ऑन गेटिंग ट्रांसफर, दो साल, ढाई साल. और जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाते हो तो ट्रांसफर इज प्रेटी ऑफन, यू नो, यहाँ से. और हम बम्बई के रहने वाले थे, लाइक माई वाइफ ऑल्सो, शी इज ऑल्सो फ्रॉम बॉम्बे. अब उसका भी करियर का था इशू. तो अगर आप करियर किसी का, मेरे चक्कर में उसका करियर सेक्रीफाइस होना वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो डूइंग वेल. तो वो एक बैलेंस लाना था कहीं तो. And that was a big sacrifice, you know, कि ठीक है, Navy छोड़. So I was from a short service commission. So 10 साल serve की, एकदम बिंदास, पूरा पूरा जी जान से serve किया, मजे में. And then you are a fauji for life. हमेशा तुम फौजी रहते हो. Then I came out. And then, you know, interestingly, साला जो जो फौज जब कराती थी, फ्री में कराती थी, एडवेंचर ये वो, तभी नहीं किया बोला, अरे कौन जाता है साला रनिंग एंड ऑल. फौज छोड़ने के बाद वो सब चालू किया, यू नो, डिस्टेंस रनिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, या वॉट एवर, यू नो.
क्यों चालू किया?
सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो फौज में 2008 के आसपास, तो आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट. मैं अच्छा, आई वॉज गुड स्पोर्ट्स मैन, आई यूज टू प्ले ऑल स्पोर्ट्स. 2007 तक थिंग्स वेर प्रेटी राइट मेरे साथ, मतलब हेल्थ वाइज एवरीथिंग वॉज फाइन. एक बार साला जब क्लोज टू 2008 व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव नेवी, सो माय वेट वाज 107. माय वेट वाज 107, मतलब मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये मैं ही हूँ करके. एंड तभी रिलीज मेडिकल होता है. सो फौज में कैसे, आप आने के लिए भी मेडिकल है, जाने के लिए भी मेडिकल है. सो देर इज अ रिलीज मेडिकल. रिलीज मेडिकल में व्हेन आई वेंट, तो यू नो, एक डॉक्टर है बहुत प्यारा सा, गुड फ्रेंड, जूनियर टू मी. तो उसने सिर्फ इतना बोला, बोला कि सर बहुत बढ़ गया है. पहले भी बोला था दो बार, तभी ध्यान नहीं दिया. एंड बाय दैट टाइम आई हैड, वी हैड बेबी, यू नो, लाइक डॉटर दो साल की थी. उसने सिर्फ इतना बोला कि सर डॉटर को अगर ना ग्रो अप होते हुए देखना चाहते हो तो कंट्रोल में लाओ लाइफ, नहीं तो यू वॉन्ट लीव फॉर 4-5 ईयर्स के बाद तुम फट जाओगे करके. दैट प्रोबेबली चेंज माई एवरीथिंग. होता है ना रियलाइजेशन फॉर यू, देर वॉज अ रियलाइजेशन. सो हम सबके लाइफ में एक रियलाइजेशन आता है. तो मेरी लाइफ में वो रियलाइजेशन तब हुआ, बोला कि नहीं यार फैमिली तो एक ऐसी चीज है ना जिसके लिए आप सब कुछ करते हो. आप फौज छोड़े फैमिली के लिए बिकॉज यू नो यू वॉन्टेड टू गिव अ करियर एंड यू वॉन्टेड टू बी विद देम एंड यहाँ यू आर फकिंग योर सेल्फ. मतलब दारू हो रहा है, ये हो रहा है. एंड आई वॉज स्मोकिंग हैवी इन टू आज आज सो आई हैव क्विट स्मोकिंग नाउ लॉन्ग. तो तभी तो ऐसे था, कभी एक पैकेट सिगरेट हो जाता. स्ट्रेस के नाम पे हम बनाते अपने आप को ले रहे. एंड यस ग्रेजुअली फिर आई वॉज डिटेक्टेड विथ हाइपोथायरॉयड. सो आई एम अ हाइपोथायरॉयड. सो लोग जनरली थायरॉयड जो होता है ना लेडीज को होती है यू नो. एंड फिर यू हैव टू टेक. तो मुझे मेरी वाइफ बोलती थी अरे ओनली लकी मैन गेट दैट करके. सो वो एक पॉजिटिव वाइब देता था पहले. थायरॉयड अभी तो कॉमन है ना. तभी हमारे टाइम जब थायरॉयड होता था तो यू इट वॉज लाइक डायबिटीज. डायबिटीज हो गया तो पहले लोग अभी भी एकदम सल्क हो जाते हैं. तो थायरॉयड भी तभी वैसे था, अरे थायरॉयड हो गया. बट एनीवेज तो उसमें जब व्हेन यू स्टार्टेड लुकिंग पॉजिटिव कि देन दैट डॉक्टर सेड कि नाउ यू स्टार्ट रनिंग, डिस्टेंस रनिंग चालू कर तो ही तेरा वेट कंट्रोल में आएगा. नहीं तो थायराइड इज समथिंग अगर आप छोड़ दो. इवन टुडे अगर मैं 2 दिन नहीं रन किया तो थर्ड डे आई विल गेट दैट ब्लोट फील कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है टाइप्स यू नो.
इंडिया में डिस्टेंस रनिंग की मेन ट्रेनिंग कहाँ होती है?
इंडिया में बैंगलोर एंड बॉम्बे इज द हब.
ओके
यू नो. सो पहले जो डिस्टेंस रनिंग थी वो सिर्फ फौज में होती थी.
डिस्टेंस मतलब कितनी डिस्टेंस होती है?
सो डिस्टेंस सी क्या होता है ना रनिंग यू नो हम सब भागते हैं एंड देन द ट्रेडिशनल रनिंग जो क्रॉस कंट्री या यू नो व्हेन वी से अबाउट हाफ मैराथन. सो पीपल स्टार्ट विथ 5 किलोमीटर्स एंड 10 किलोमीटर. एंड जनरली आप जब हाफ मैराथन में ग्रेजुएट हो जाते हो 21 किलोमीटर्स इज योर हाफ मैराथन यू नो 21 point something. एंड देन कम्स दी 42 किलोमीटर विच इज फुल मैराथन. एंड कम्स दी अल्ट्रा मैराथन जो 42 के बियॉन्ड होता है विच गोज उसके बाद तो लिमिट नहीं है यू नो सुपर अल्ट्राज एंड ऑल. तो एक नशा है वो भी बहुत भयंकर नशा है यू नो. फौज में था तो ये लोग को जब एकेडमीज में तो रेस्ट्रिक्शन दौड़ा देते थे 20-30 किलोमीटर दौड़े. बट तभी आप एंजॉय नहीं करते थे बिकॉज समवन वाज फोर्सिंग यू ये तेरा पनिशमेंट है या तेरा ये. बाहर आने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग अगेन सो इट वाज पूरा एक वो गेम होता है ना वापस. आप इतना भागे पहले फौज में एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो. इतना वेट लेके आप 200 मीटर चल रहे हो फिर बैठ रहे हो फिर चल रहे हो फिर बैठ रहे हो and that 200 meter become 1 kilometer. It was like rediscovering you, you know. And when I say running, it was like meditation in motion bolte hai jisko na. It was like meditation in motion. And फिर वो अगला पागलपन पे पहुंच जाता है. Then that distance का जो kick मिलता है 21 में. अभी तो thanks to you know so many thanks to social media पर से Facebook हुआ या यहाँ से बहुत बड़ा revolution आ गया running में. And now running has become so big. People have made career as a coach. People have made career as a running organizing company. Lot of them. And good events. India may be good events. And I did lot of full marathons and half marathons. And like South Africa, mein 2019, I did Comrades, which is 89 kilometers run.
What?
Which is 89 kilometers run. That is from Durban to Pietermaritzburg, you know.
Sir, 89 kilometers ki run, matlab continuously ab run karto.
हाँ तो ये जो कॉमरेड्स है ना तो कॉमरेड्स का इंटरेस्टिंग अगेन सिंस वी आर इनटू फौज ये भी फौज रिलेटेड है यू नो. 100 साल पहले साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ. क्यों हुआ था? बिकॉज कॉमरेड्स जो नेम है ना इट्स लाइक ब्रदरहुड. वो फॉलन अपने जो फॉलन कॉमरेड्स है उसको सेलिब्रेट करने के लिए दिस गाइज रैन फ्रॉम वन सिटी इन साउथ अफ्रीका टू अनदर जो और वो तभी उनको पता नहीं था कितना डिस्टेंस है. बाद में पता चला कि ये 90 किलोमीटर है करके यू नो. और ये जो रेस होता है इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेरी प्रेस्टीजियस अल्ट्रा मैराथन. जो भी रनर्स होते हैं उनके लिए इट इज़ लाइक बोलते हैं ना कि मरने से पहले एक बार करना चाहिए एक बार करो करके. बट इट्स एन एक्सपीरियंस. तो आपको 12 घंटे में ख़त्म करना होता है 11 hours 59 में. एंड यू हैव स्टेजेस 6 stages होती है उसके कि आपको 18 किलोमीटर इतने पे पहुंचना है 32 किलोमीटर इतने पे 46 इतने पे 60 इतना 81 ऐसे 6 stages. अगर आप कोई भी स्टेज पे नहीं पहुंचे योर रेस इज ओवर. यू नो, ये नहीं कि मैं पहला स्लो भागूंगा फिर. अगर आप 60 पे पहुंचे नहीं वो टाइम पे, योर रेस इज ओवर एट 60.
आपके लेग्स की और आपके हिप्स की क्या हालत हो
लग जाती है. एंड दैट्स हाउ ट्रेनिंग ना, दैट्स हाउ ट्रेनिंग. एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे ना इसका कि ऑल जो भी ट्रेन करते हैं जनरली डिस्टेंस रनिंग में पीपल आर आफ्टर 30. प्रोबेबली दे वर्क लाइफ का किक मिल के यू आर यू गेट इन टू सम एक्सपीरियंस, फिर आपको कुछ नया चाहिए होता है. तो 30s के बाद वाले, तो अभी जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉमरेड्स रनर है, जो मेरे कोच हैं सतीश गुजरन बोल के, ही इज डूइंग फॉर द 11th time दिस वुड बी 11th time एंड ही इज इनटू व्हाट 60s 58 टू 60s. मतलब उनका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लाइक यू नो ही स्टार्टेड रनिंग ओनली एट द एज ऑफ 44. ही वाज इनटू स्मोकिंग ड्रग्स एंड ऑल, उसके बाद is what he is today.
So, परिवर्तन
परिवर्तन सबके 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 जीवन में परिवर्तन आता है ना.
ओके वैसे तो काफी ज्यादा एडवेंचरस पॉडकास्ट बन चुका है और आई अगेन आई फील कि जितने भी मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनमें इनफाइनाइट पॉडकास्ट होते हैं. एक आखिरी सवाल है आपके लिए सर, क्योंकि ये नेवी स्पेशल पॉडकास्ट बन चुका है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेवल वॉरफेयर इन जनरल? क्योंकि जीडी बख्शी सर से बात हुई थी इसी पॉडकास्ट पे, उन्होंने कहा कि द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन मिलिट्री इज दैट वी आर वेरी इंजीनियरिंग सेंट्रिक एंड वी कीप बेटरिंग वेपन्स, वी कीप बेटरिंग स्ट्रैटेजीज. बेसिकली इंडियन मिलिट्री बहुत शाणी है, स्मार्ट है, स्मार्ट मिलिट्री. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड वाइड नेवल वॉरफेयर एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन वॉरफेयर?
सो नेवी, इफ यू सी एज वी सेड ना, हम बोलते हैं ना कि पूरा पानी है हमारा, जो पूरा जो विश्व जो बोलते हैं पूरा पानी है. तो obviously everyone has to invest in their navy. And if you see China or US or anybody, everyone, so rightly said ki it is all technological advancement. To har country mein, jaise hamare yahan DRDO hai, DRDLs hai, jo you know who's always working on something or the other, jo hamare bhi jo missiles aa rahe hain, Dhanush, jo indigenous missiles hai, lot of them are coming. So world over navies are working day and night to better. फिर वो स्टेल टेक्नोलॉजी आती है, यू नो आपका रडार आपको कितना कैप्चर करेगा, लाइक आप दैट इज ऑल्सो बिकॉज आप अगर व्हेन यू आर इन द ओशियन, द वन थिंग इज कि यू नो द डिटेक्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, कि अगर आप पानी में रह गए, अगर आपका जो जो एनिमी का सबमरीन्स वगैरह अगर आपको पकड़ लिया, तो यू नो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ थिंग फॉर देम टू टॉर्पेडो मार दिया और आप गए करके. सो इट इज अ गेम ऑफ कैट एंड माउस बोलते हैं ना, कि आप अपने आप को कितना छुपा सकते हो और आप कितना दूसरों को ढूंढ सकते हो करके. वर्ल्ड ओवर नेवीज आर एडवांसिंग विथ यू नो टाई अप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे इसराइल है, दे आर मच 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 एडवांस इन टू एनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज, तो उनसे कोलैबोरेशन
की क्वालिटी ज्यादा,
उनकी वेपन्स की क्वालिटी ज्यादा.
व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मतलब इसराइल इतना छोटा सा देश,
सीरियसली वो इवन यू नो वी ऑलवेज हम भी हमारे सर्कल में वी ऑलवेज डिस्कस दैट कि साला इतना पिद्दू सा कंट्री है एंड देन वाई दे यू नो, जबकि पैसा वैसा सब तो है हमारे पास. प्रॉब्ली आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस.
ओके बेसिकली जो मैंने अब तक सीखा है इट्स अबाउट स्टेल्थ मेनली.
वेरी ट्रू.
व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ एयरफोर्स, AI is a part of it. You know, automated aircrafts.
True.
Future of army is another game, but
true.
Navy, it's all about stealth.
True. Mm. Very true.
Side ninja warfare. Ninja warfare. What I would say. Wow. काफी crazy podcast था विजय सर. My God.
In fact, I'm sure कि navy के बारे में generally very few naval veterans are there on you know social media पे है. Probably I got a chance to get into this space only during lockdown when करने को कुछ था नहीं ज़्यादा, you know, office का काम से free हो जाता. Lot of these youngsters requested कि come and sir, help us, you know. So that's how I came into this space. And so Navy के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं. किसको नहीं पता होता है कि क्या क्या है करके. At least चलो अपन whatever little I know in this 10 years, I'm sure Navy is huge, Navy is vast. It's beautiful more than anything. Wo jo life hai na, it's so beautiful. It makes you so. And as I say, thoda compared to army se jo hote hain aur air force se hote hain, navy technically jo quality of people are bit more because thode padhe likhe hote hain, wahan se aate hain kahin kahin se, B town se as we said. सो यू ऑलवेज हैव एन अपर एज. अगर आप अभी भी कॉर्पोरेट्स में भी जब हायर करते हैं, सो अभी बाहर आने के बाद व्हेन अ पर्सन लीव, जब आप फौज छोड़ते हो, तो एक जनरल कॉर्पोरेट में परसेप्शन होता है कि ये बंदा एडमिन या एचआर के लिए फिट है करके, यू नो, सो या सिक्योरिटी के लिए फिट है, मतलब नॉट वैसा सिक्योरिटी बट सिक्योरिटी वाला रोल के लिए. बट नेवल नेवी से जो बाहर आते हैं उनको काफ़ी टेक्निकल रोल्स मिल जाते हैं बिकॉज दे हैव सीन दिस शिप में डे इन एंड डे आउट ऑल्दो, सो दे हैव अ बिट टेक्निकल
इंजीनियरिंग
रिलेटेड दैट वे.
विजय सर बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ आपकी स्टोरी से.
थैंक्स थैंक्स एंड माय प्लेजर रणवीर, यू नो लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क यू नो.
थैंक यू
एंड आई बिलीव इन दैट बिलो 30 यू आर वन ऑफ द नेम्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा यहाँ आके.
Always learning from military personnel, sir. I feel ki it's about time that the country starts celebrating military aggressively.
True.
And
true.
That time is yours. So.
True.
Thank you, sir.
अगर हम air पे नहीं होते तो old monk पी जाते.
Thanks. I've been a teetotaler for a while, but I will enjoy through your enjoyment.
Thanks, Ranveer. धन्यवाद.
Thank you. तो ये था हमारा special episode विजय नायर सर के साथ. वैसे तो मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पॉडकास्टर्स होते हैं, यानी कि कॉन्वर्सेशनल्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर 10-20 कॉन्वर्सेशंस ऐसे पड़े हुए हैं. इसलिए इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में, मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा नेवी के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा एक्सपीरियंसेस के बारे में. मैं इस एपिसोड को एक नेवी 101 एपिसोड की तरह ट्रीट करना चाहूँगा. भारतीय मिलिट्री की दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम साथ साथ में ऑडियंस और पॉडकास्टर्स मिल के साथ में सीख रहे हैं. एंड दिस वॉज माई अटेम्प्ट एट ब्रिंगिंग यू नेवी 101. लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर को हमारा सलाम, हमारे बेस्ट विशेस और हमारी एक रिक्वेस्ट कि सर इस पॉडकास्ट पर लौट के आइए, कि सर इस पॉडकास्ट पर लौट के आइए. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द TRS हिंदी टीम. जय हिंद.